हेयर ऑयल इज अ बिग नो फॉर अस. इट विल इंक्रीज द हेयर फॉल. इससे बालों में फुंसियां हो सकती हैं, चेहरे पे पिंपल्स हो सकते हैं, एंड फायदा जीरो.
हेयर फॉल शैम्पू, डू यू थिंक इट्स अ थिंग?
नहीं, शैम्पू इज फॉर क्लिंजिंग ऑफ स्कैल्प. अगर हम शैम्पू से क्लेम करें बाल उग जाएंगे वापस, दैट इज रॉन्ग.
कोई नेचुरल तरीका नहीं होता इसको रोकने का?
गार्लिक, अनियन, भृंगराज, थोड़ा सा इससे हेयर रीग्रोथ हो सकता है, बट वो हेयर फॉल रोक देगा और बहुत ज्यादा बॉल्डनेस को रिवर्स कर देगा, वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए.
हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट से कुछ होता है?
मतलब वो इतना काम ही नहीं करते हैं.
Do you think hair gummies से hair वापस आते हैं?
Non scientific चीज़ है.
Hair wax होता है, gel होते हैं, ये सारे styling products होते हैं. Do you think ये लगाना चाहिए?
तो ऊपर से आपने करा तो कुछ भी नहीं है. कुल मिला के आपका skin और hair का जो root है जो skin से निकल के आता है उसमें अगर आपने chemical नहीं अटच किया कुछ तो कोई नुकसान नहीं है.
Masturbation से hair loss होता है?
हम हमारी life में बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके बड़े insecure हैं. मेरे बाल तो नहीं जा रहे, मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनता, शायद मेरी बॉडी थोड़ी पतली है, थोड़ी मोटी है. हर चीज़ को लेके हम इनसिक्योर होते जाते हैं एंड इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है. तो लाइफ में अगर किसी चीज़ को चेंज करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है ना तो कर लो. तुम्हें लगता है कि फिट होना है, तुम्हारी जैसी बॉडी है उसमें तुम खुश नहीं हो तो फिट हो जाओ. तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़े दांत सही करने चाहिए तो ब्रेसिस लगवा लो. तुम्हें लगता है कि मेरे बाल अच्छे नहीं है तो ट्रीटमेंट ले लो. जो भी चीज़ करने से तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस आता हो ना तो कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है. क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है और वो लाइफ में अफेक्ट कर रही है तो तुम्हारे पास दो ही तरीके हैं, या तो उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके कॉन्फिडेंट हो जाओ, या वो नहीं हो पा रहा है तो चेंज कर लो और उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप है वो ले लो. आज के गेस्ट उसी के बारे में बताएंगे हमें. One of the biggest insecurity in India, in fact in the world, पूरी दुनिया में ये insecurity बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, जो है hair fall, receding hairline, बालों का जाना. इंडिया में और globally बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गंजे होते जा रहे हैं, उनके बाल गिरते जा रहे हैं. तो आज के गेस्ट हैं दो डॉक्टर्स जो इंडिया के लीडिंग डॉक्टर्स हैं ऑन हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट. तो वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लिनिक्स चलाते हैं, यूजेनिक्स. उन्होंने एम्स से पढ़ाई करी और उसके बाद इतनी डीप रिसर्च करी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब उनसे ही हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, जैसे मोहम्मद शमी, रवि शास्त्री एंड बहुत सारे बिलियनर्स एंड क्रिकेटर्स. तो आज का पूरा पॉडकास्ट है कि इंडिया में सबके बाल क्यों जा रहे हैं, ग्लोबली हेयर फॉल अगर होता है तो क्यों हो रहा है सबको, हेयर फॉल्स की जो मिथ्स हैं कैसे हम उसको ट्रीट करें, हमें ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, किस किस को ज़रूरत है, नेचुरली क्या हो सकता है, अननेचुरली क्या हो सकता है, एवरीथिंग अबाउट एन इनसिक्योरिटी जो कि रिलेटेड है हमारे हेयर और हेयर फॉल से, उस इनसिक्योरिटी के बारे में बात करिए एम से पढ़े हुए दो बड़े डॉक्टर्स के साथ. इससे पहले कि आप ये पॉडकास्ट स्टार्ट करो एक रिक्वेस्ट है. 83% लोग जो इस पॉडकास्ट को देखते हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर इस पॉडकास्ट से आपको कभी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि हमें वो एक सब्सक्राइब कितनी हेल्प करता है पूरी टीम को. एंड उसके अगेंस्ट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गेस्ट लाऊंगा जो आपकी लाइफ में आपको एक बेटर इंसान बनने में हेल्प करेंगे. बिफोर यू स्टार्ट द एपिसोड को सब्सक्राइब राजशुमानी क्लिप्स एंड राजशुमानी शॉर्ट्स चैनल एज वेल, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को छोटे छोटे क्लिप्स और शॉर्ट्स में डालते हैं ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें. एंजॉय द शो.
मेरे कमेंट्स देखोगे ना प्रोग्रेस होते जा रहे हैं वो पिछले एक साल से, वेयर पीपल आर स्टार्टेड टेलिंग मी दैट ओके राज तुम बॉल्ड होते जा रहे हो, तुम्हारी हेयरलाइन दिख रही है, ज़्यादा बचे नहीं है बाल, थोड़े दिन में चले जाएंगे, कुछ करो. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन, तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करता अभी एट दिस पॉइंट, बट आई नो कि इन अ वाइल आफ्टर सम पॉइंट इट माइट स्टार्ट अफेक्टिंग मी, क्योंकि अब मैं देखने लग गया और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार पुराने फोटोज और अब फोटोज में देयर इज अ डिफरेंस. अभी तक अफेक्ट नहीं किया कि अच्छा ठीक है.
हैव यू क्रॉस 34 35?
नो, आई एम 27. तो ये हो क्यों रहा है, हमारी जनरेशन में इतने ज्यादा लोग हेयरलाइन उनकी पीछे क्यों जाते जा रही है?
ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, दिस इज मोस्टली जेनेटिक. अगर आपके ग्रैंडफादर को है, फादर को है, तो आपको भी होगा, बहुत हाई चांसेस है. हम ये बोल सकते हैं कि अभी जल्दी एज पे शुरू हो रही है, ठीक है. अर्लियर इट यूज टू स्टार्ट मे बी एट 35-40, बट नाउ इट्स स्टार्टिंग एट अर्ली एज, मे बी एज अर्ली एज 19 ऑल्सो, 17 ऑल्सो. सो आई थिंक मे बी लाइफ स्टाइल इज अ फैक्टर, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग सच प्योर फूड्स एंड द वी आर स्लीपिंग लेस. So maybe all those factors are there.
So अब जैसे ये baldness बढ़ रही है, इसका कोई specific reason है कि नहीं, ये सिर्फ इसलिए lifestyle बेकार है, या maybe screen exposure बहुत ज़्यादा है, vitamins nutrients proper नहीं मिलते, ये सब combination, बस ये जो basic lifestyle related problems है, यही है कि कोई और major reason है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा bald हो रहे हैं?
Lifestyle can affect in women. तो लेडीज़ में अगर हेयर फॉल हो रहा है, गर्ल्स में हो रहा है या लेडीज़ में हो रहा है, तो उसमें लाइफस्टाइल का रोल ज़्यादा है. डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी का ज़्यादा है. जैसे कि जो हमारी टिपिकल इंडियन डाइट होती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी कम होता है. इवन इफ़ वी आर नॉन वेजिटेरियन, वी आर टेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग नॉन वेज इज़ वेरी लेस. तो प्रोटीन इनटेक की वजह से बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं इन विमेन. बट वेन इट कम्स टू मेन, वहाँ पे आई वुड से इट इज़ जेनेटिक. ठीक है, जो पहले भी बॉल्ड होते थे जेनेटिक रीजंस की वजह से, अब भी हो रहे हैं. बट हाँ, अभी लोग अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं, पहले बॉदर नहीं करते थे. ठीक है, अभी क्या है, मीडिया में हर कोई आ रहा है, एवरीबडी इज़ गेटिंग इनटू गेटिंग देयर करियर इन मीडिया, सो दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस, आई वुड से. बट हाँ, एंड अब हमारे पास सोल्यूशंस अवेलेबल हैं बॉल्डनेस को कम्प्लीटली रिवर्स करने के. पहले सोल्यूशन ही नहीं था तो लोग बॉदर नहीं करते थे, तो वो भी एक फ़र्क है. बट मेन में आई वुड से इट इज़ मोर और लेस द सेम. प्रीपोनमेंट हुआ है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. मोर देन 60-70% ऑफ मेन आर अफेक्टेड विद बॉल्डनेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ.
60-70%
ऑफ मेन,
हर तीसरा इंसान, लाइक हर चार में से तीन लोग टेक्निकली आर गेटिंग 60-70% के आसपास. अगर लेते तो दैट्स,
हाँ, अमंग मेन, मेन, या
हर चार लड़कों में से एक, तीन सिर्फ एक ही है जो इसको बॉल्डनेस. दैट्स क्रेजी.
इसको मैं थोड़ा सा ना, एक पॉइंट जो हमेशा मैं बोलता हूँ, आज थोड़ा इसको आपके थ्रू आई वांट टू क्लियर दैट, कि हेयर फॉल और बॉल्डनेस दोनों डिफरेंट चीजें हैं.
ओके.
जैसे हेयर फॉल, हाँ, जैसे कंघी में बाल आना या बाथरूम में शैम्पू के बाद बाल आना, तकिए पे बाल आना, उसको लोग यूजुअली जनरली हम लोग बोलते हैं हेयर फॉल बढ़ गया. सो वो एक्चुअली दैट इज अ, वो जो हेयर फॉल होता है इमीडिएटली सडनली एक होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है. यूजली डाइटरी प्रॉब्लम होती है, या क्रैश डाइटिंग हुई, या कुछ और स्ट्रेस हुआ, या पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट कोविड, कोविड के अगर ठीक ठाक किसी को कोविड हुआ था 2021 में, तो 2-3 महीने के बाद बॉडी का जो स्ट्रेस होता है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद हेयर फॉल होता है, गुच्छे गुच्छे बाल आते हैं. आपने बहुत देखा बहुत सर, जब रोज 100 से ज़्यादा बाल गुच्छे इकट्ठे कंटिन्यूस मोर देन 1 वीक और 10 डेज होता है, देन प्रॉपर दैट मीन्स कुछ तो बॉडी को इंसल्ट हुआ है. मतलब देर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट इज मेडिकल और नॉन मेडिकल, न्यूट्रिशनल ऑल्सो, उस स्ट्रेस का कुछ ना कुछ कारण होगा. और उस कारण को अगर आपने ट्रीट किया, क्योंकि इमीडिएटली हुआ है 10 डेज के अंदर अंदर, यू कैन फाइंड द कॉज एंड यू कैन फिक्स दैट ऑल्सो, दैट इज फिक्सेबल. तो वो हेयर फॉल कैटेगरी जो है ना, नॉर्मल रूटीन रैंडम जो सारे लोग हम लोग बोलते हैं मेरा हेयर फॉल बढ़ गया, वो इमीडिएट होता और इमीडिएट कारण भी और फिक्स करता. नाउ कमिंग टू द अदर साइड, बॉल्डनेस. बॉल्डनेस मतलब गंजापन, जो कि खाली होना बाल, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मिनिएचराइजेशन, एक धीरे धीरे बाल, मोटा बाल, थोड़ा पतला, फिर पतला, फिर पतला होता है.
मैं भी एक सिंपल सा दूंगी. बॉल्डनेस है जब एक पर्टिकुलर एरिया के 80% से ज्यादा बाल झड़ गए, तो वो एरिया बॉल्ड हो चुका है, यानी गंजा हो चुका है. हेयर फॉल इज कि बस बाल झड़ रहे हैं, बॉल्डनेस नहीं हुई है, तो आपके बाल पतले हो रहे हैं. तो जब बाल झड़ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है. जब एरिया पूरा खाली हो गया, 80% से ज्यादा बाल चले गए, तब वहां पे सर्जरी करनी पड़ती है.
गॉट इट.
मतलब खाली हो गया,
ये जो है इधर बॉल्डनेस हो रही है.
हाँ जी, हाँ जी.
और यहाँ से अगर कुछ भी गिरता है तो ये हेयर फॉल है.
अभी अभी के लिए थिनिंग है वो, या हेयर फॉल है, तो उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से करना चाहिए. अब लोग क्या करते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, चलो सीधा सर्जरी करा लें, तो उल्टा हो जाएगा. अगर आप वो अर्ली स्टेज में आपने सर्जरी कराई, तो आपका हेयर फॉल और बढ़ जाएगा. So it's better to stop the hair fall in areas which can be retrieved, ठीक है, and to do surgery in a area which has turned fully bald.
हजार companies हैं, हजार कंपनियों के hair fall oils आते हैं, hair fall shampoos आते हैं, अब hair growth pills आने लग गई है, hair gummies आने लग गई है. Let's talk about these. ये सब काम करती हैं? हेयर फॉल शैम्पू, डू यू थिंक इट्स अ थिंग?
नहीं, शैम्पू इज फॉर क्लिंजिंग ऑफ स्कैल्प, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमको रोज करना चाहिए शैम्पू, उससे हमारे बालों की जड़ें क्लीन होती हैं. बट अगर हम शैम्पू से क्लेम करें बाल उग जाएंगे वापस, दैट इज रॉन्ग.
तो एंटी हेयर फॉल जो शैम्पूज होते हैं वो क्या है?
वो आई थिंक दे आर सेइंग कि वो माइल्ड शैम्पू है, ठीक है. बट वो एक हमारे मन में एक रॉन्ग मिथ जगा रहा है. आई नो कि वो हेयर फॉल नहीं रोकेगा, बट मे बी वो एक माइल्ड शैम्पू है जो बालों को ज़्यादा फ्रिजी रफ नहीं बनाएगा. तो हर शैम्पू में एक डिटर्जेंट कंटेंट होता है, जितना डिटर्जेंट होगा झाग उतना ज़्यादा बनेगा, तो बाल एंड द एंड बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई मे बी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, या जिस शैम्पू पर लिखा होता है अप्रूव फॉर डेली यूज़, वो माइल्ड शैम्पू है, ठीक है. उसमें झाग कम बनेगा और बाल उतना फ्रिजी और रफ नहीं होगा. तो शैम्पू शुड बी वन विच वी कैन यूज़ डेली.
तो शैम्पू एक रोज शैम्पू यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं होता कि
शैम्पू हमको हफ्ते में आई वुड से 4 से 5 बार तो मिनिमम करना चाहिए, जितना इंडिया में हमारी धूल मिट्टी है और जितना हमारा एक्सपोजर है. अगर हम बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं, डस्ट का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, तब हम फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं 3 times a week. बट जनरली हम लोग बाहर जाते हैं, पसीना आता है और ऑयल प्रोडक्शन होता है हेयर रूट्स में, और टीनेज और 20s में जो होते हैं उनको तो शैम्पू आई वुड से 5 to 7 times a week करना ही चाहिए.
तो ऐसे नहीं बोलते लोग कि ज़्यादा शैम्पू यूज़ करोगे तो लाइक डेली अगर शैम्पू यूज़ करोगे या रोज़ शैम्पू यूज़ करोगे तो बाल गिरने लग जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे?
नहीं, इम्पॉसिबल. शैम्पू से बाल झड़ेंगे नहीं और ना शैम्पू से उगेंगे. शैम्पू इज लाइक क्लिंजिंग ऑफ स्कैल्प.
इसका मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. जैसे हम लोग रोज साबुन लगा के हाथ मतलब शरीर को धोते हैं ना, तो एग्जैक्टली लाइक दैट. तो बाल जो है ना वो स्किन के नीचे करीब 3 to 4 millimeter डेप्थ में है, ऊपर नहीं है. तो अगर हेयर को आप कुछ अफेक्ट करना चाहते हो तो आप इंटरनली जो कुछ होता है आपके न्यूट्रिएंट में या कुछ डिजीज में या कुछ ड्रग्स में, मतलब दवाई जो आप लेते हैं, तो उससे उसका इफेक्ट आता है, उगेगा या नहीं उगेगा, झड़ेगा बड़े वो. बट ऊपर से करके कुछ कर देंगे आप, ये तो इम्पॉसिबल है, वो साइंस ही नहीं है. वो हमको आदिकाल से बोलते आ रहे हैं और हमारे यू नो सोसाइटी में, इंडियन सब कंटिनेंट में चलता है, बट वो दैट इज नॉट सब लाइक यू नो काइंड ऑफ साइंस एट ऑल. जस्ट
So all these products tell me they're not science backed. मतलब anti hair fall shampoos.
Anything which is
इतने ज़्यादा there's a whole you go on Amazon या DMart जो सबसे बड़े retailers हैं, इनमें जाओ सबसे ज़्यादा sale इन्हीं की है. मैं नाम नहीं लेना चाहता
नहीं मैं उसका से,
but we all know right. और अलग अलग ingredients के shampoos हैं. मतलब there is some, मान लो कोई ऑर्गेनिक एंटी हेयर फॉल होगा, कोई अनियन बेस्ड होगा, कोई ब्रिज रिंगा होगा, कोई कोई कुछ और होगा. 25 तरह की चीजें हैं.
मैंने इनके रेफरेंसेस निकाले हुए हैं तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी. गार्लिक, अनियन, भृंगराज एंड आपने जो चौथा फोर्थ क्या था जो आपने बताया,
बस ऑर्गेनिक ही कुछ ना कुछ होता है. जैसे
तो जितने भी हैं ये क्या है, स्कैल्प में इरिटेंट्स है, ठीक है. ये स्कैल्प को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, तो टेक्निकली यस थोड़ा सा इससे हेयर रीग्रोथ हो सकता है, बट वो हेयर फॉल रोक देगा और बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस को रिवर्स कर देगा, वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. पर ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं जो खुद उसका गार्लिक पेस्ट बना के स्किन पे लगाया और स्किन जल गई. हाँ, स्किन जल गई, जैसे स्किन में इरिटेशन हो गई, बिकॉज वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इरिटेंट हो जाता है. तो ये सारी चीजें खुद से नहीं करनी चाहिए कि घर में प्याज का रस लगा के निकाल के लगा रहे
हैं. तो मेरे घर में ही हुआ था प्री पैंडेमिक. आई थिंक कोई आर्टिकल या कोई रील देख ली होगी कुछ ना कुछ. आई थिंक माय बुआ और माय दीदी और माय मॉम, आई डोंट रिमेम्बर किसने, पर देखी कि अनियन ऑयल अगर आप घर सर पे लगाते हो तो उससे आपके हेयर रीग्रोथ होने लग जाती है, राइट. एंड किड्स पे तो नहीं, बट ऑल द अडल्ट इन द हाउस, सारे अडल्ट्स घर के वो अनियन ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया. एग्स लगाने का बीच में कुछ हो गया था कि एग से करो. इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जहां पे लोग बोले बियर से बाल धोते हैं तो बहुत अच्छा, लाइक इट्स जस्ट इनसेन. कुछ ना कुछ ये सब लिखा जाता है और लोग लगाने लग जाते हैं. तो यू आर टेलिंग मी कि ये घर के जो नुस्खे हैं, अनियन वेरी 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 फेमस कि अनियन का रस लगाओ,
उसका
गाजर लगाओ, एग्स लगाओ और गार्लिक पेस्ट, ये चारों.
नहीं, मैं थोड़ा उसको एक एक करके बताता हूँ. जो ओनियन एंड गार्लिक जो है ना, दे आर इरिटेंट, उसके अंदर केमिकल्स हैं जो इरिटेशन करता है ना.
तभी तो उसका जूस आंखों से पानी भी निकालता है ना, वो इरिटेंट है वो.
तो इरिटेंट अगर आपने कंसंट्रेटेड किसी के स्किन पे लगाया, हो सकता है आपका स्किन रिएक्ट ना करे, मेरा स्किन रिएक्ट कर जाए. एंड नाउ कमिंग टू एग. एग इज प्रोटीन, वो कंडीशनर की तरह काम कर सकता है. यू नो यू फील सिल्की अबाउट योर हेयर, जैसे कंडीशनर करता है. तो वो दैट इज ओके, लेकिन एक लगाते हैं तो उसे नुकसान कुछ नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स स्मेल यू हैव टू टॉलरेट। देन वन मोर, और एक कौन सा था आप लगा रहे थे?
बट से फायदा होता है कुछ कि नहीं?
दैट इज कंडीशनर,
टेंपरेरी फील गुड फैक्टर है। कंडीशनिंग आपके हेयर शाफ्ट को शायद थोड़ा सॉफ्ट कर दे, बट इट्स बेटर टू यूज द कंडीशनर्स। हाँ, बिकॉज उसमें आप रॉ एग यूज करेंगे तो स्मेल होगी, उसको क्लीनिंग करने में दिक्कत होगी।
सो टेल मी, कंडीशनर वैसे अच्छे होते हैं? शुड वी अप्लाई कंडीशनर? रोज लगाना चाहिए कंडीशनर वालों पे?
डिपेंड्स कि आपके हेयर कितने फ्रिजी हैं। जनरली आई वुड से वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक लगाइए, और वो लेंथ पे लगाइए, रूट्स में नहीं लगाइए, लगाना चाहिए कंडीशनर। कंडीशनर है अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं तो शैम्पू के बाद आपने हेयर लेंथ पे लगा लिया उनको, और फिर जब बाल थोड़े से पार्शली ड्राई करके लगाइए और कुछ मिनट रख के आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। तो जिनके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, एंटैंगल ज़्यादा हो जाते हैं, तो दे कैन यूज़ कंडीशनर। एंड अ गुड कंडीशनर शुड बी लिटिल बिट थिक इन टेक्सचर कंसिस्टेंसी, तो वंस अ वीक या वंस इन अ मंथ कोई भी लगा सकता है। बट हाँ, जैसे किसी के बाल बहुत छोटे हैं तो उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर रूट्स में लग जाएगा, और रूट्स में चला गया तो फिर उसको क्लीनिंग करना दिक्कत हो जाएगी।
तो लड़कों के तो यूजुअली बहुत छोटे होते हैं।
हाँ, सो लड़कों को लेंथ में लगा सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी कम करके, वंस इन अ मंथ लगाना चाहिए अगर बाल फ्रीजी हैं तो। अगर बाल फ्रीजी नहीं है तो मत लगाएं।
मुझे लगाना चाहिए? नहीं,
आप सीरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपके बाल ज्यादा ही छोटे हैं, सीरम लगा सकते हैं, हेयर सीरम।
कंडीशनर लगाना चाहिए?
कंडीशनर कम लगाइए, हाँ, फ्रीक्वेंसी कम रखिए,
वट एवर सूट होता है।
सीरम विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्रीजीनेस। तो सीरम जो भी होता है वो आपके हेयर फॉल को ना रोकेगा ना बढ़ाएगा, ठीक है। सीरम इज अ आई वुड से रिड्यूसेस द फ्रिजीनेस, इट कोट्स द हेयर शाफ्ट। तो
हेयर थोड़ा
जैसे बाल रफ है, हम छू रहे हैं तो बाल बहुत रफ फील हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रिजीनेस। वो उलझ रहे हैं, कंघी करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बहुत रफ फील हो रहे हैं, फूस जैसे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है घास फूस जैसे बाल दिख रहे हैं शैम्पू के बाद, क्योंकि बहुत ड्राई हो चुके हैं। तो ऐसे केस में जब शैम्पू आपने कर लिया, बालों को हल्का सा टॉवल ड्राई करके आप एक दो बूंद सीरम की लेंथ में लगाइए गीले बालों पे, एंड देन ड्राई देम इन एयर, ठीक है, प्रेफरेबली कोल्ड एयर, हॉट एयर नहीं यूज़ करना चाहिए। जब हम गर्म हवा में या हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं विद हॉट एयर, तो उससे बाल डैमेज होते हैं, बिकॉज हेयर लेंथ इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन केराटिन, इट कैन गेट डैमेज्ड इफ इट इज एक्सपोज टू हॉट एयर। सो डोंट यूज हॉट एयर, डोंट इवन यूज वार्म एयर, यूज एयर एट रूम टेम्परेचर। उससे टाइम ज़्यादा लगेगा आपको बाल सुखाने में, बट इट दैट इज बेटर फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो हेयर सीरम आप लगाइए लेंथ में।
ओके, टेल मी नेक्स्ट, एक और जो, बिकॉज हम लोग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं एफएमसीजी, ऑयल बहुत चलते हैं, 25 तरीके के ऑयल्स आते हैं, राइट? और पहले तो मुझे लगता था कि ओके अनियन ऑयल बढ़ाएगा, या मान लो क्या पैराशूट कोकोनट ऑयल लगाएगा, या ऑलमंड ऑयल बढ़ाएगा, लेकिन अब हर एक इंग्रेडिएंट पे ऑयल आ गया है, और वो सब ये क्लेम करते हैं कि तुम्हारे हेयर फॉल नहीं होगा, तुम्हारे हेयर बेटर हो जाएंगे। सो ऑयल से कुछ होता है?
ऑयल इज अ बिग कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेरे हिसाब से, ऑयल लगाना ही नहीं चाहिए। ऑयल क्या है कि आपकी हेयर रूट में,
नहीं लगाना चाहिए बालों
में? नहीं, हमारे जो मेडिकल साइंस की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें यही है कि ऑयल मत लगाइए आप। देखिए क्या होता है, इसकी साइंस में बताती हूँ। हेयर रूट के साथ ही एक ऑयल ग्लैंड होता है जिसको सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, वो रूट के साथ अटैच्ड होता है। तो अ हेल्दी हेयर रूट इज अटैच्ड विद अ हेल्दी सिबेशियस ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ सीबम। तो आपने देखा अगर आप दो तीन दिन शैम्पू नहीं करेंगे तो आपकी स्किन में ये रूट्स तेल ऑयली हो जाता है ना, आपकी फेस की स्किन भी। तो फेस और स्कैल्प की स्किन इंटरकनेक्टेड है, लॉट ऑफ सीबम प्रोडक्शन हैपन्स, इनफैक्ट यू नीड टू क्लींस दैट ऑफ। अब आप उसको क्लींस करने की जगह ऊपर से ऑयल लगाएंगे तो आप समझिए आपके ऑयल ग्लैंड्स क्लॉग हो जाएंगे, तो फेस पे आप एक्ने निकल सकता है, ठीक है, पिंपल्स और एक्ने का आउटबर्स्ट हो सकता है ड्यू टू हेयर ऑयल, और स्कैल्प में भी पिंपल्स, डैंड्रफ और बाकी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट यस, ऑयल इज़ गुड फॉर बॉडी, आप बाकी बॉडी पे ऑयल लगाइए, बिकॉज बॉडी डजेंट हैव दैट मच ऑफ हेयर, एंड बॉडी कैन नीड ऑयल, बॉडी ऑयल टू टेक केयर ऑफ द ड्राइनेस। बट हेयर ऑयल इज अ बिग नो फॉर अस, इट विल इंक्रीज द डैंड्रफ, इट विल इंक्रीज द हेयर फॉल, इससे बालों में फुंसियां हो सकती हैं, चेहरे पे पिंपल्स हो सकते हैं, एंड फायदा जीरो।
एंड देन देयर इज वन मोर प्रोडक्ट जो भी बहुत फेमस हो गए स्पेसिफिकली ऑनलाइन मार्केट में, राइट? ऑनलाइन अब बहुत इनकी एड्स आती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं, हेयर गमीज। डू यू थिंक हेयर गमीज से हेयर वापस आते हैं? एप्पल साइडर विनेगर गमीज, बायोटिन गमीज, hair growth gummies,
it was very popular in USA, now the gummies have started coming to Indian market also. I'm sure the gummies mein na विटामिन ही होते होंगे, यू नो मल्टी विटामिन अलग अलग रेशियोज में होता होगा डेफिनेटली. ये तो कॉमन सेंस है कि अगर हमने कोई मल्टी विटामिन लिए सो सारे ऑर्गान को बेनिफिट होता है, नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो उससे आपकी बॉडी की एक वेलबींग हो सकती है. बट एग्जैक्टली पर्टिकुलर आपको हेयर फॉल हो रहा था और आपने मार्केट से हेयर गमीज लेके आपने खाया और उससे आपके बाल आए, ऐसा डेफिनेटली नॉन साइंटिफिक चीज़ है. हमारी साइंटिफिक ब्रेन कभी कंप्लेंट नहीं करे, उसको एंडोर्स भी नहीं करे.
लेट्स टॉक अबाउट मार्केट की. यूजुअली अभी मिनोक्सिडिल जो है या फिनास्ट्राइड जो है, ये दो सब्सटेंस है जो ओवर द काउंटर बहुत मिलने लग गए. देयर लॉट ऑफ लार्ज फार्मा कंपनीज, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे
हैं. हाँ, यही दो दवाइयां हैं जो USFDA अप्रूव्ड है, जो बाल झड़ने को रोकती हैं एक्चुअल में.
बट इसके अलावा ओवर द काउंटर नहीं, एकदम डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में. डॉक्टर शुड नो कि हाउ लॉन्ग ही कैन गिव, व्हेन टू टाइट्रेट, when to lower the dose, when to stop it, when to reintroduce something called tachyphylaxis. क्या होता है कि सेम दवाई खा खा के थोड़े दिन में वो दवाई के इफेक्ट खत्म हो जाती है, रुक जाती है. दवाइयों के और भी मॉडिफिकेशन काफ़ी हो चुके हैं, जैसे वो जो दवाई आपने बताया उसके अलग फॉर्मुलेशन हो चुके हैं, अलग डोजेस आ चुके हैं. जो टॉपिकल था ओरल भी हो चुका है, और जो यू नो फर्स्ट वाला दवाई बताया आपने उसके और उसके सिस्टर मेडिसिन भी आ चुके हैं. देन R&D कंटिन्यूस चल रहा है, तो इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं. बट Anything which is not prescribed, then it is unregulated.
तो लोगों को directly ऐसे जो available है दोस्तों दोस्तों से सुन के या ऑनलाइन ऐड देख के या कोई content देख के ये डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए,
एकदम कतई नहीं. तो
ओके, ऑन दिस टॉकिंग अबाउट साइड इफेक्ट्स, बिकॉज आई हर्ड दिस साइड इफेक्ट वेरी वेरी लाइक 500 टाइम्स मिनोक्सिडिल का, दैट टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है या सेक्शुअल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है या मेन स्पेसिफिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है. यहाँ 25 और चीज़ें होती है कि अगर आप मिनोक्सिडिल लगा रहे हो तो ये सारी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती है. तो इसलिए मेन शुड स्टे अवे फ्रॉम इट अनटिल दे हैव किड्स और मे बी लाइक अनटिल दे हैव दे वांट टू कीप देयर सेक्सुअल लाइफ एक्टिव. ये और ये गूगल करोगे आप तो गूगल पे 15 आर्टिकल इस पर लिखे होते हैं कि दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर. डू यू थिंक दिस इज ट्रू, फॉल्स, व्हाट इज इट?
ये जो आपने साइड इफेक्ट्स बताए ये फिनेस्टेराइड के हैं, मिनोक्सिडिल के नहीं हैं. तो जो फिनेस्टेराइड टैबलेट के हैं ये साइड इफेक्ट्स, ये 2-3% लोगों को होते हैं, दैट्स ट्रू, उसमें कोई मनाही नहीं है. बट हाँ, द बिग चंक 97-98% लोगों को नहीं होते, तो दोज पीपल शुड टेक इट. ठीक है, जो 2-3% को हो रहे हैं दे आर रिवर्सिबल. आज वो दवाई बंद कर देंगे तो साइड इफेक्ट्स डिसअपियर हो जाएंगे. सो दिस दिस नॉट अ परमानेंट साइड इफेक्ट्स. बट येस, आई वुड से कि वो 2-3% लोगों को जो फिनेस्टेराइड नहीं ले सकते उनको नहीं लेनी चाहिए. सो अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेजर करेंगे वो मोर और लेस सेम रहते हैं. ठीक है, वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. आप कोई भी लैब टेस्ट कर लीजिए वो भी सेम रहता है. फर्टिलिटी लेवल सेम रहते हैं, स्पर्म काउंट रिमेन्स सेम. दी इफेक्ट इज प्योरली I would say psychological. If a person is saying he's feeling a reduction in the drive, then we have to take it as a yes. Okay? Then we have to believe it. There is no way that we can objectively prove the side effect.
Okay, we'll come to transplant. But before that, I want to cover 2-3 things. One is, do you think ki jo hair wax hota hai, ya jo gel hote hain, ye sare styling products hote hain, do you think ye lagana chahiye on a regular basis? Isse koi nuksan hota hai? कि कुछ भी नहीं होता, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
नहीं, अगर जेल और स्टाइलिंग वाला प्रोडक्ट है, अगर ऊपर ऊपर ऐसे डॉक्टर आरिका ने शुरू से बताया, जैसे मैं भी आया हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मैंने यू नो वैक्स हमारे स्टाफ ने कर दिया थोड़ा सा ऐसे सेट करने के लिए बाल को, तो ऊपर ऊपर से आपने करा तो कुछ भी नहीं है. कुल मिला के आपका स्किन और हेयर का जो रूट है जो स्किन से निकल के आता है उसमें अगर आपने केमिकल नहीं अटच किया कुछ, तो कोई नुकसान नहीं है. आपने ऊपर से कुछ भी किया, थोड़े बहुत लगा के एनी वे धुल जाना है वो सारा बाद में.
बहुत ज्यादा ना लगा ले, रूट्स में बेसिकली. फिर रूट्स में आप चला जाएगा तो क्लींस करना मुश्किल होगा. सो दीज स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आर फॉर हेयर लेंथ, नॉट फॉर द रूट्स.
एंड जो वॉल्यूमाइजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल वो बहुत फेमस है, वॉल्यूम शैम्पू. शैम्पू तो खैर बना ही कर दिया आपने.
नहीं नहीं राज, उसमें जब आप कोई भी वॉल्यूम के प्रोडक्ट ना कुछ वो पाउडर डालते हैं है ना, बड़े सारे चीजें डालते हैं, स्प्रे वे करते हैं,
वॉल्यूम स्प्रे, वॉल्यूम पाउडर,
उसे मेडिकली कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आप नीचे तक तो जा ही नहीं रहा.
अच्छा वो क्या करते हैं
वो हेयर माइक्रोफाइबर्स की बात कर रहे हैं जो एक वो आता है पाउडर फॉर्म में आता है आप ऐसे डाल लेंगे तो बॉल्ड ब्लैक कलर का तो उसकी बात कर रहे हैं सो दैट्स अ टोटली एक्सटर्नल चीज उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो आप लगा सकते हैं
ओके एंड हेयर ड्रायर्स पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग ऑन एवरीडे बेसिस इज इट रॉन्ग गुड बैड हेयर ड्रायर अगर मैं रोज यूज करता हूँ हॉट एयर से मेरे बाल ड्राई करने के
हाँ इट इज वेरी बैड फॉर हेयर बिकॉज मैंने आपको बोला था गर्म पानी से बाल धोना ठीक है और तेज गर्म पानी से बाल धोना दैट इज नॉट हेल्दी दैट विल डैमेज योर हेयर एंड हेयर रूट्स एंड विल एक्सेलरेट द हेयर फॉल और आप जो हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं उसमें आपको कोल्ड एयर का भी ऑप्शन आता है रूम टेम्परेचर का उसमें टाइम ज्यादा लगता है इनफैक्ट आई वुड से 5 गुना ज्यादा टाइम लगता है बाल सुखाने में हाँ बट वो आप यूज करिए और ड्रायर में भी आगे उसकी एक फिटिंग आती है एक डिफ्यूज़र वाली फिटिंग आती है जिसमें बहुत स्लो स्पीड में एयर निकलती है तो आप उसमें धीरे धीरे बालों को सुखाएं तो इतना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा बाल सुखाने में इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग हॉट एयर दैट इज़ बेटर और बाल सुखाना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने बाल गीले ही छोड़ दिए कंटिन्यूसली दिन भर गीले रह गए लेट अस सपोज तो क्या है वो वाटर बहुत देर तक आपके हेयर शाफ्ट पे पड़ा रहा तो वो बालों को बहुत ड्राई कर देगा जैसे हमारा हाथ की स्किन भी अगर बहुत ज़्यादा पानी में एक्सपोज हो जाए तो ड्राई हो जाती है तो ऐसे हेयर को भी सुखाना तो ज़रूरी है बट ड्रायर आप रूम टेम्परेचर वाला करिए
जो अगर
डेली भी यूज़ कर सकते हैं ड्रायर
बट अगर रूम टेम्परेचर वाले हीट वाला इज वेरी बैड
हाँ हाँ हाँ
ये हमारा जो है ना ये एक केराटिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जैसे एग इज प्रोटीन जब वो बॉयल हो जाता है हार्ड हो जाता है ना
कोएगुलेट
हो जाता है उसको डीनेचर हो जाते हैं वो तो कोई भी एनी प्रोटीन व्हिच कोएगुलेट्स बिकम्स हार्ड सो अगर ये भी प्रोटीन ही है अगर आपने गर्म हवा लगाया इसमें तो दिस विल बिकम हार्ड ड्राई एंड यू नो दैट विल गेट डैमेज्ड तो जो इसका जो साफ्ट है वो कुछ भी हो सकता है ऑफकोर्स और स्किन के ऊपर अगर गर्म हवा लगेगी देन स्किन विल रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ हेयर फॉल ऑल्सो दैट इज टेम्पररी बट होगा
तो हीट रेजिस्टेंट प्रोडक्ट से कुछ होता है हीट रेजिस्टेंट स्प्रेज आते हैं वो हीट रेजिस्टेंस स्प्रेज लगा और फिर हेयर ड्रायर लगा
नहीं नहीं वो कोई काम मतलब वो इतना काम ही नहीं करते हैं जो हीट रेजिस्टेंट हाँ हीट रेजिस्टेंट स्प्रे क्रीम वो सब कुछ खास काम नहीं करता इससे बेटर है आप बिना हीट के ही बाल को सुखाइए और कई लोगों को क्या आजकल है कि जिनके बाल कर्ली है वो स्ट्रेट करना चाहते हैं जिनके स्ट्रेट हैं वो कर्ली करना चाहते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप अपने नेचुरल उसमें जाइए टेक्सचर में अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं गो फॉर अ स्ट्रेट लुक ओनली आप जबरदस्ती कर्ल करोगे तो आपका शाफ्ट को हमेशा हीट से ही करोगे आप या फिर एक कुछ केमिकल्स आते हैं फॉर्मलिन है थायोग्लाइकोलेट है कुछ केमिकल्स आते हैं जिससे आप उसका शेप चेंज करते हो हाँ और जिनके कर्ली बाल हैं वो उनको स्ट्रेट चाहिए तो वो केमिकल स्ट्रेटनर्स यूज करते हैं तो वंस इन अ वाइल ठीक है आपने कभी किया साल में एक बार या चार साल में एक बार इट्स फाइन बट रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे स्ट्रेटनिंग चाहे हीट से करें चाहे केमिकल से करें तो आपके बाल खराब होंगे
so, जो लड़कियां हेयर स्ट्रेटनिंग यूज करती है वेरी फ्रीक्वेंटली
हाँ
हर बार व्हेन दे आर गोइंग आउट दे यूज इट लड़के यूज करते हैं हेयर ड्रायर्स वेरी फ्रीक्वेंटली कि बाहर निकल रहे हैं स्टाइल करने ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग
हीट एक्सपोजर इज रॉन्ग
कमिंग बैक टू द ट्रांसप्लांट ओके यू बोथ आर नोन फॉर ट्रांसप्लांट्स राइट है कि अब जब सब खत्म हो गया अब जहाँ से बाल चले गए यहाँ पे वापस आ सकते हैं
तो ट्रांसप्लांट से हो सकता है जहाँ से खाली हो गया राज हम लोग क्या करते हैं हम उसको हेयर रेस्टोरेशन बोलते हैं
हेयर रेस्टोरेशन
हाँ रेस्टोरेशन का मतलब है कि प्रिवेंट द ऑनगोइंग हेयर लॉस एंड प्लांट वेयर देयर इज एम्प्टीनेस
टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत फेमस है मैं रिसेंटली
क्योंकि
गया था
एयरपोर्ट
मैंने इस्तांबुल में मैं मेन एरिया में था वहाँ पे और मेन एरिया मेरे होटल के जस्ट नीचे ही मैंने 15 मिनट के अंदर शायद 15 लोग देख लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करा के आए थे और एकदम प्रॉपर पूरा
एकदम वो
ब्लड आके बैठे हैं
एकदम पूरे दैट इज वो उस पॉइंट पे हम आएंगे हमारे पास एक्चुअली अभी 20-30% पेशेंट जो आते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड से वो टर्की में सब खराब करवा के फिर वो देखते हैं कि वो टेम्पलेट बना के आते हैं पूरा
टर्की इतना फेमस क्यों है
क्योंकि एक्चुअली टर्की में क्या ज्योग्राफिकली दैट इज़ वेरी क्लोज टू यूरोप सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट एक हो गया दैट इज़ ऑल्सो इंडिया इज़ फार अवे फ्रॉम यूएसए ऑल्सो एक हो गया वो, सेकंड तुर्की के गवर्नमेंट ना उसने रेगुलेशन जितना कम करे हुए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का, सो एनीबॉडी कैन ओपन ए कॉस्मेटिक क्लिनिक, डॉक्टर की डिग्री नहीं होगी तो भी क्लिनिक बना सकता है वो। और मेरे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं तुर्की में तो हमको बताते हैं, और हम बहुत बार जा चुके हैं, सो वी नो द बिकॉज हमारा, क्योंकि
बिना डॉक्टर की डिग्री के तुम डर्मेटोलॉजी क्लिनिक खोल सकते हो वहाँ पे।
हाँ, नहीं हेयर ट्रांसप्लांट
क्लिनिक चल रहे हैं वहाँ पे।
और इस तरह पूरे तुर्की में उनका क्या है, व्हाट इज देयर बिजनेस मॉड्यूल इज टूरिज्म, सो दे वॉन्ट कि लोग उनके कंट्री में आए फॉर वट एवर पर्पज, दे शुड कम, आएंगे तो कंट्री की इकोनॉमी उसी से बूस्टिंग होती है, तो उनकी कंट्री की काइंड ऑफ जो बैकग्राउंड इज टूरिज्म, सो दे इन्वाइट पीपल। तो टर्की में जो कॉस्ट ऑफ एनी वर्क इंक्लूडिंग होटल हो या यू नो कॉस्मेटिक सर्जरी हो, कॉस्ट काफ़ी कम है, सो इसीलिए वो लोग कम कॉस्ट कटिंग करके कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन और उसकी रेगुलेशन है नहीं, तो इन दैट वे तो कम सस्ते में। और गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इट इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर टोल्ड मी कि गवर्नमेंट गिव सब्सिडी, अगर आपने मार्केटिंग करी कहीं टू गेट टूरिज्म देन यू विल गेट सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, सो इन दैट वे पूरी फेवरेबल एटमोसफियर है टू डू थिंग्स इन अ वेरी लो कॉस्ट, और फिर जियोग्राफिकली दैट इज़ वेरी क्लोज बाय टू द ऑल द नियर बाय, यूरोप हो, सेंट्रल एशिया, गल्फ हो, सो इसीलिए तो वेन इतना कॉस्ट कटिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ क्वालिटी कहाँ से आएगी, यू डोंट हैव लाइक वहाँ नेल पॉलिश लड़की से लेके ऑल दोज पीपल दे ओपन देयर क्लिनिक्स, एंड टू माई आवर नॉलेज मोर देन 2000 क्लिनिक्स आर देयर, उनमें से कुछ होंगे 100 या 150 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स होंगे प्रॉपर, वो भी दे डू सो मच वॉल्यूम ऑफ वर्क, देर नो वे की क्वालिटी कंट्रोल हो पाए। अब जब मैं ये वाला पॉइंट बताता हूँ, इट इज़ वेरी कस्टमाइज्ड वर्क, चेहरा है कस्टमाइज्ड है, उसमें हर हेयर की पोजिशनिंग एकदम कस्टमाइज्ड है, यू कैनॉट टेक अ थिक हेयर एंड पुट ऑन द फ्रंट, यू हैव टू चूज द राइट हेयर विच शुड गो टू द राइट प्लेस, तो इसलिए तो मुश्किल है टू इमेजिन कि हाउ दे डू इट इन, बट इतने कॉस्ट कम होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग गए इन लास्ट 10 ईयर्स, बट धीरे धीरे पूरी की पूरी वर्ल्ड में ये अवेयरनेस आ चुका है कि भाई ये पूरा का पूरा एक फैक्ट्री है जिसमें कस्टमाइजेशन नहीं है, गलत काम होते हैं, गलत काम इन टर्म्स ऑफ गंदा काम, एंड सम पीपल हैव डाइड ऑल्सो, अगर डॉक्टर्स नहीं है, किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हुआ, दवाई की साइड इफेक्ट हुई, किसी चीज़ का हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ नहीं हुआ, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट ऑफ रिएक्शन टू इन जो मेडिसिन जो हुए इतने सीवियर यू नो हो सकता है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो टर्की इज नॉट फेमस, इट इज़ इल फेमस फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, बट वहाँ टर्की में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, दे डू गुड वर्क, अगर आपने इफ़ यू कैन सर्च एंड यू कैन गो देयर देन इट इज़ ओके, बट ऐसे नहीं कि टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, आपको रिसर्च करना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 1 साल रिसर्च करना चाहिए, गुड डॉक्टर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ओके, टॉक अबाउट, टेल मी प्रोसेस क्या होती है एक किसी को अगर ट्रांसप्लांट कराना है, अब उसने मान लिया है कि चलो अब दिस आर द दिस इज द प्लेस वेर एवर द फेस, जहाँ पर भी मेरे को बाल नहीं आ रहे, मे बी इट्स क्राउन, मे बी इट्स नेक, मे बी इट्स द फोरहेड, फोरहेड इज द आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर वन जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो अब किसी को नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो कौन सी एज पे कौन सी स्टेज पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। पूरा अगर क्लीन फोरहेड हो तो भी बाल वापस आ जाते हैं, मतलब विद ट्रांसप्लांट,
मतलब अगर ये पूरा चला गया हो तो भी आ जाते हैं, और हमारा वो स्पेशलाइजेशन है, इसको बोलते हैं Grade 6-7, जिसमें फ्रंट, मिड और ये क्राउन तीनों एरियाज चले गए हैं, बट पीछे का डोनर अच्छा है, साइड्स का डोनर अच्छा है, उस केस में भी बाल आ जाते हैं, और इनफैक्ट कंप्लीट कवरेज भी हम अचीव कर सकते हैं।
तो ट्रांसप्लांट मतलब ये कि मैक्सिमम केसेस में बाल तो आ जाएंगे, कहीं पे भी हो, कैसे भी, जिस भी एरिया से जा रहे हैं,
प्रोवाइडेड आपका डोनर पीछे के बाल घने हैं, ठीक है, ये वाले बाल जो होते हैं ये परमानेंट बाल होते हैं,
और अगर ये नहीं हो
तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, तो वो सर्जरी
यहीं के बाल। ओके, व्हाट्स द प्रोसेस, टेल मी, एक्सप्लेन।
सो द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि हमारे ये वाले जो बाल हैं ये परमानेंट है, ये बॉल्डनेस से अफेक्ट नहीं होते, ये
पीछे के ऊपर है,
हाँ, नेक के जस्ट ऊपर ये वाले और ये वाले, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल स्कैल्प, इसको बोलते हैं टेम्पोरल स्कैल्प, तो ये वाले बाल कभी नहीं जाएंगे, और ये वाले बाल जा सकते हैं फ्रंट, मिड या क्राउन। आपने देखा होगा किसी का फ्रंट पूरा अच्छा है, सिर्फ क्राउन गया है, किसी का सिर्फ फ्रंट गया है और मिड और क्राउन अच्छा है, और किसी का ऑल द थ्री एरियाज गेट अफेक्टेड, ठीक है,
समी के जैसे आपने सामने गया था और क्राउन गया था, बीच में उसका जा रहा था,
तो वो बताने मतलब हर किसी का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि वो एरिया में बाल वापस आ सकते हैं दवाई से या नहीं। ठीक है, अगर दवाई से आने का थोड़ा भी स्कोप बाकी है, यानी वहाँ पे रोए रोए बाल हैं, बाल पतले हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाइयाँ लेनी चाहिए और कोशिश, फर्स्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि उस बाल को वापस से रीग्रो करने के लिए कोशिश करें। बट अगर एरिया पूरा चिकना हो गया, एज आई सेड कि 80-100% बाल चले गए हैं, तब वहाँ पर सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है, तो वहाँ पे हम सर्जरी कर सकते हैं। अब सर्जरी में क्या है, बहुत सिंपल सी साइंस है, हम पीछे से बाल लेंगे इस तरीके से कि पीछे से लगे ना कि लिए हुए हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं पंच। ठीक है, तो पंच एक मोटर के ऊपर फिट होता है, तो मोटर रोटेट्स द पंच एंड वी द डॉक्टर होल्ड्स द मोटर एंड द पंच एंड दे एक्सट्रैक्ट द हेयर रूट्स फ्रॉम द बैक साइड एंड देन दे आर इम्प्लांटेड ऑन द फ्रंट। ओके, सो द डॉक्टर मेक्स द हेयर लाइन डिजाइन, दे मेक द स्लिट्स, ठीक है, जहाँ पे बाल लगेगा, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, बिकॉज उससे आपका फाइनल आउटकम डिटर्मिन होता है। ठीक है, तो जैसे जब आपने सोचा कि मान लीजिए मुझे सर्जरी करानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप मेडिसिन ले पाएंगे ताकि वो बाल आप लाइफ टाइम इंजॉय कर सकें। पहले तो आप होलिस्टिक अप्रोच पे जाइए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अ गुड हाई प्रोटीन डाइट, प्रॉपर स्लीप अलॉन्ग विद द मेडिसिन विच योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब, क्या आप उसको लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, रेडी टू कमिट योर सेल्फ? इफ़ येस एंड देन यू शुड लुक एट योर ओल्ड पिक्चर्स, आपका फेस पहले कैसा दिखता था जब बाल बिल्कुल नहीं झड़े थे। ट्राई टू टेक एज मैनी ओल्ड पिक्चर्स एज पॉसिबल एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर विद द सर्जिकल प्लान। तो डॉक्टर ऑन द डे ऑफ सर्जरी आपकी हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे कोई बहुत लंबा है, एथलेटिक फेस है, तो थोड़ा सा हाई हेयरलाइन, वी शेप्ड हेयरलाइन करेंगे। किसी का फेस थोड़ा गोल है, तो हम थोड़ा सा राउंडेड हेयरलाइन ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी पुरानी हेयरलाइन की शेप को रिक्रिएट करना चाहेंगे, उसे थोड़ा डिफरेंट करना, तो थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो एक बार जब हमने फाइनलाइज कर दिया प्लान, तो फिर हम प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर लोकल एनेस्थीजिया में किया जाता है, हम पूरा बेहोश नहीं करते, अ पर्सन रिमेन्स फुल्ली अवेक ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, और जैसे कि बाकी सर्जरीज में हम पेशेंट को खाली पेट रखते हैं कि एक रात से पहले कुछ नहीं खाना है बिकॉज एनेस्थीजिया दिया जाएगा, इसमें उल्टा है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अच्छे से खाना खा के आइए, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लीजिए, बिकॉज इस सर्जरी में आप पूरी तरह जगे रहेंगे। जैसे आप डेंटल प्रोसीजर में सिंपल डेंटल वो एनेस्थीजिया कराते हैं, डेंटल एनेस्थीजिया, सेम एनेस्थीजिया वी गिव ऑन द स्किन, वेरी सेफ, वेरी सुपरफिशियल, बट इट्स अ टाइम टेकिंग सर्जरी, बिकॉज जैसे अगर 1000 बाल लग रहे हैं तो पहले 1000 स्लिट्स बनेंगे, फिर 1000 ग्राफ्ट्स निकलेंगे और फिर वो 1000 लगाएंगे। तो इट्स अ टाइम टेकिंग लेबर इंटेंसिव सर्जरी विच गोज ऑन फॉर द होल डे, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। प्रोसेस सुपरफिशियल है, मिनिमली इन्वेजिव है, हीलिंग टाइम बहुत फास्ट है, बट इट गेट्स बोरिंग फॉर द पेशेंट टू सिट थ्रू द प्रोसीजर फॉर द होल डे। बट वो एक दिन आपने अपने लाइफ के लिए वो आपने कर दिया और फिर 7 दिन आपने कमिट कर दिए हीलिंग के लिए, देन यू आर सॉर्टेड, दोज हेयर विल ग्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग यू डू, देन यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स कम आफ्टर 8 to 10 months ऑफ द प्रोसीजर, समटाइम्स 12 months ऑल्सो। और आपने फुल कवरेज की बात की थी, तो जिनको फुल कवर करना है, फ्रंट, मिड और क्राउन, ठीक है, तो उनके लिए स्कैल्प के साथ हमको बॉडी हेयर भी यूज करने पड़ते हैं, खासकर बियर्ड के हेयर।
मैं ये पूछ रहा था।
हाँ जी, तो हम ये वाले हेयर यूज कर लेते हैं उनके केस में, जो अनवांटेड हेयर ऑफ द नेक, बिलो द चिन, ठीक है, और उसको भी इस तरीके से लेते हैं कि यहाँ कुछ पता नहीं चलता।
बट लेते हैं एज इन, मतलब क्या होता है, लाइक
एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
अगर मेरे यहाँ से आप हेयर एक्सट्रैक्ट करते हो या किसी के यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, तो मतलब यहाँ हट जाएंगे?
हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बाल नहीं आएगा, वो एक रूट की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो पार्ट ऑफ स्किन अलोंग विद द हेयर शाफ्ट अबव एंड द टिश्यूज बिलो इट टिल द रूट।
तो ये हट जाए अगर मैंने यहाँ से हेयर लिया।
हाँ,
तो ये हट जाएगा,
ये बाल यहाँ से परमानेंटली चला जाएगा,
लेकिन दिखेगा नहीं,
आपको पता नहीं चलेगा कि वो चला गया है। ठीक है, अनलेस हमने बहुत ज़्यादा निकाले, अगर हमने 30-50% भी निकाले तो आपको पता नहीं चलेगा, यू विल फील इट इज लुकिंग द सेम।
50% में भी पता नहीं चलेगा।
हाँ, 50%, लेकिन 50% को बड़ा डिफ्यूजली लेना है, लाइक यू नो होमोजिनियसली प्लानिंग के साथ अल्टरनेट आप ले लो। तो जैसे किसी भी एरिया से अगर 50% हेयर ले लिया, जैसे मान के चलो मेरे बियर्ड से या आपके बियर्ड से 50% होमोजिनियसली प्लान करके लिया अल्टरनेट, जब दाढ़ी ग्रो करेंगे पता नहीं चलेगा कि निकाले।
तो मुझे दर्द नहीं हुआ?
वो लोकल एनेस्थीसिया एक बार हो गया तो नंब हो गया, तो ऊपर आपको पता नहीं, आपको हैवी सा लगेगा ऊपर, दैट्स इट, बाकी काम चलता रहेगा ऊपर, आप एकदम पूरा टीवी देख रहे हो, वर्ल्ड कप देख रहे हो, या आपने खुद का कुछ ले रखा, आपने वो किया, आप अपना यू नो कान पे पॉडकास्ट सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो।
पोस्ट केयर, अब ये बताओ कि वो हो गया 8 घंटे, उसके बाद वैसे छोटे छोटे जो एक बड़ा इट आल्सो लुक्स स्कैरी, मतलब जो कराता है रिसेंटली, एक और एक मेरे फ्रेंड ने कराया, ही इज 34 आई गेस, ही इज 34 एंड ही गॉट इट डन, एंड ही वाज पूरे सर पे ऐसे छोटे 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 डॉट्स हो गए, ही गॉट कंप्लीटली बॉल्ड और छोटे छोटे डॉट्स हैं हर जगह, राइट, और ब्लड ब्लड ब्लड।
सो मैं बता,
वो उसके अब क्या होता है, मतलब वो पूरा तो आपका डॉट डॉट हो गया, तो मैं सोच सकता हूँ उसके साथ कि मुझे सर ऐसे रखना पड़ेगा,
नहीं नहीं
बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगा, क्या होता, मतलब दिखता तो ऐसा है कि इट मस्ट बी पेनिंग अ लॉट, मतलब स्क्रैच तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आई गेस, क्या होता है?
देखिए पोस्ट ऑप पेन इज आई वुड से जीरो, डिस्कम्फर्ट रहता है बट पोस्ट ऑप पेन नहीं होता, बिकॉज जितना भी हाँ जितने भी छोटे छोटे वूंड्स मैंने बताए वो बहुत रैपिडली हीलिंग फेज में चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा वूंड है, तो एकदम से ग्रैनुलेशन टिश्यू आएगा और वो एकदम से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, बट हाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, वो भी डे वन पे, ठीक है। तो प्रिकॉशन ये होती है कि आप जब सोएंगे, जहाँ हमने बाल लगाए हैं वहाँ पे कोई टचिंग रबिंग या ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, बिकॉज वो जो बाल लगाए हैं उनको सेट होने में 7 दिन लगेंगे 100% सेट होने में।
तो 7 दिन तक क्या करना होता है, मतलब मैं
7 दिन तक, हाँ जी, इस एरिया को आप नॉर्मली सोइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप दोनों तरफ बड़े तकिए लगा सकते हैं ताकि आप बहुत एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट ना हो, आप नॉर्मली सो सकते हैं, बट हाँ अगर आपने क्राउन कराया तो आप एक नेक पिलो यूज़ कीजिए, नेक पिलो यूज़ करने से क्या आपका ये एरिया टच नहीं होगा जब आप सो रहे हैं, तो डेफिनेटली जब क्राउन कराते हैं तब आपको नेक पिलो यूज़ करना पड़ता है और थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, बट अगर फ्रंट किया है तो उतना कॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है सोते वक्त। तो हम एक स्प्रे देते हैं जो आप रेगुलरली एवरी 2 to 3 hours इस एरिया में स्प्रे कर सकते हैं जहाँ भी हमने बाल लगाए हैं, और पीछे के लिए हम एक एंटीसेप्टिक स्क्रब बीटाडीन स्क्रब देते हैं जिससे हम पीछे का डोनर क्लीनिंग डेली बेसिस पे कर सकते हैं, वो 7 दिन तक करना होता है। 7 दिन में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बेड पे लेटे रहना है, यू कैन मूव अराउंड, यू कैन डू ब्रिस्क वॉकिंग एंड यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन वर्क फ्रॉम होम, आप कुछ भी करिए, बट उसको ट्रॉमा से बचाइए। सेकेंड, डस्ट से बचाना ज़रूरी है, ठीक है, आप किसी बहुत धूल मिट्टी वाली जगह पर मत जाइए, घर के बाहर जा सकते हैं, AC गाड़ी में जा सकते हैं आप, बट जहाँ बहुत ज़्यादा डस्टी ना हो, और कैप पहन के जाइए घर के बाहर।
जैसे अगर आपको आना है, इफ यू वांट टू कम टू द ऑफिस, यू कैन कम नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन कम टू द ऑफिस, यू कैन टेक द फ्लाइट सेम डे इवनिंग। मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, सो लेट्स से प्रोसीजर खत्म हुआ 5 o'clock, 10 o'clock की फ्लाइट लेके जाते हैं, हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाओ ताकि फर्स्ट डे थोड़ा यू नो टेक इट इजी काइंड ऑफ थिंग, बट लॉट ऑफ पीपल दे नो दैट, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उनको पता है, दे नो एवरीथिंग, तो उनको दे डोंट वेट, सो यू कैन ट्रैवल।
कोई नेचुरल तरीका नहीं होता इसको रोकने का, मतलब मान लो अगर मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया या नहीं भी किया, मैं दवाई की जगह मल्टीविटामिन या जो भी मेरी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं उसको नेचुरली अपनी डाइट लाइफस्टाइल या सिर्फ नॉर्मल विटामिन से मैं ट्रीट नहीं कर सकता?
आपको देखिए, अगर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं आप, तो आप लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करिए, स्लीप पूरा अच्छे से लीजिए, विटामिन सप्लीमेंटेशन लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट भी लीजिए, सब कुछ सही करिए, तो आप हो सकता है उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकें, ठीक है, 5 साल 10 साल, इफ़ यू लकी आप 20 साल शायद पोस्टपोन कर दें, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स, ठीक है, बट आप ट्रीट नहीं कर सकते। अब अगर एक बार बाल झड़ गए तो आप उनको फिर लाइफस्टाइल और प्योरली विटामिन उन सब चीज़ों से उगा नहीं सकते वापस से।
तो इट्स प्रिवेंशन आज कर सकता हूँ, अगर अब मैं 17-18 होता या 20 होता है, व्हाटएवर हूएवर इज देयर, They can do it.
उसका कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम है, कई लोगों का बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल सब सही जा रहा है, बट जेनेटिक टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो भी उनको बॉल्डनेस हो जाएगा, ठीक है, तो बट हाँ थोड़ा लेट होगा, जैसे अगर इफ दे आर डेस्टाइन टू बिकम बॉल्ड एट 27 लेट अस सपोज, तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ किया, हो सकता है 27 की जगह 29 हो जाए, ठीक है, या हो सकता है 32 हो जाए, तो वैसा करके थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, परमानेंट प्रिवेंट नहीं कर सकते।
लोग बोलते हैं कि तुम्हारा हाई स्ट्रेस वर्किंग एनवायरनमेंट है, राइट, तुम लोग ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे बहुत हाई स्ट्रेस है, तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, यू आर नॉट मे बी टेकिंग प्रॉपर मेजर्स और वेलनेस रिट्रीट्स पे नहीं जा रहे हो, या तुम खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, इसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से बाल खत्म हो रहा है।
देखिए एक दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस इवेंट, ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, सर्जरी हुई, या फिर कोई बहुत इमोशनल कुछ इवेंट हुआ, उस वजह से जो एक्यूट स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस है उसको बोलते हैं टिलोजन एफ्लूवियम, वो स्ट्रेस इवेंट के 3 to 6 months के बाद होता है, दैट इज डिफरेंट। क्रॉनिक जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका एजिंग प्रोसेस थोड़ा एनहेंस होता है, यू विल एक्सेप्ट, बिकॉज कॉन्स्टेंट स्ट्रेस एंग्जाइटी लीड्स टू फास्टर एजिंग, लॉट ऑफ अदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, एंड देन एजिंग इंड्यूस्ड हेयर लॉस कैन हैपन, बट क्रॉनिक स्ट्रेस लीडिंग टू बॉल्डनेस पर से इज नॉट प्रूवन वेल।
ओके, एंड पीआरपी क्या होता है? बहुत सारे डर्मेट्स हैं जो पीआरपी सजेस्ट करते हैं।
पीआरपी की फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है, उसको मैं ऐसे बताऊंगी कि हमने आपका ब्लड सैंपल लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया 2 बार, तो उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट कर लिया, रेड ब्लड सेल्स अलग रह गए, तो उसका जो पीआरपी का कलर है दैट इज नॉट रेड, इट इज येलोइश, ठीक है, तो उसमें प्लेटलेट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, उस प्लेटलेट में ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, तो इफ वी इंजेक्ट इन टू हेयर रूट्स उससे रिजुविनेशन इफेक्ट आता है, तो उससे क्या है कि हेयर का थोड़ा वॉल्यूमाइजेशन हो जाता है, तो हेयर फॉल जिसका बहुत ज़्यादा हो रहा है वो थोड़ा रुक जाता है, जिसका हेयर फॉल रिसेंट हुआ है थोड़े बहुत बालों में वॉल्यूम और रिजुविनेशन हो जाता है। पीआरपी को हम फेस पे भी यूज़ करते हैं, उसको वैम्पायर फेशियल बोलते हैं कि आप उसको स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं तो उससे आपकी स्किन में ग्लो और रिजुविनेशन आ जाता है। सो पीआरपी इज़ अ टेम्प्ररी सोल्यूशन फॉर हेयर लॉस, ठीक है, पीआरपी जैसे ही मेटाबोलाइज होगा 6 से 8 हफ्ते में फिर से आपका हेयर विल बैक टू गेट टू स्क्वायर,
मतलब मैन्युअल है
8 हफ्ते में ही।
हाँ हाँ, सो बिकॉज़ आपने आज पीआरपी नहीं नहीं 6 से 8 हफ्ते में वो पीआरपी के जो ग्रोथ फैक्टर्स थे वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, तो आपके जो इफेक्ट्स थे वो चले जाते हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट अ सस्टेनेबल ट्रीटमेंट। सेकेंडली ये हेयर लॉस को रोकेगा, बॉल्डनेस को रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हम प्रमोट नहीं करते ज़्यादा पीआरपी को, बट हाँ फीमेल हेयर लॉस में अगर सब कुछ बाकी सब सही जा रहा है, बालों में थोड़ा सा वॉल्यूमाइजेशन इफेक्ट चाहिए, तो हम उनको पीआरपी का एक सेशंस जो हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं।
ओके, क्विक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इंडियंस टॉप 3 मिस्टेक क्या करते हैं अपने बालों से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हेयर लॉस होते जा रहा है या बॉल्डनेस हो जा रही है? व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक दैट वी मेक? आपके इतने क्लाइंट्स आते होंगे, आपने पता होगा कि लोग क्या गलत कर दिया।
हाँ जी, जैसे कि जिनको पता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी पूरा आराम से बैठे रहते हैं कि हाँ वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं,
थैंक यू।
तो बिकॉज दिस इज प्राइमरीली प्रॉब्लम ऑफ मैन, द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, सो इसलिए मैं वो बोलूँगी कि वो नंबर 1 कॉज है बॉल्डनेस का, और उसमें मैं ये बोलूँगी इग्नोरेंट होते हैं और जल्दी कंसल्ट नहीं करते और दवाइयाँ नहीं लेते उसको रोकने के लिए।
नंबर
हाँ जी, नंबर 2 जो है डाइट, आई वुड से जो मैन और वुमेन दोनों को अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी जो टिपिकल इंडियन डाइट है, हम मोस्टली तो वेजिटेरियंस होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनकी भी डाइट में प्रोटीन काफ़ी कम होता है, सो प्रोटीन हमें क्रॉनिकली लो प्रोटीन डाइट पे रहने की वजह से बाल झड़ने का प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आपने बचपन से ही बहुत कम प्रोटीन खा रहे हैं, मान लीजिए केवल दाल खिचड़ी खा रहे हैं, तो दाल से आपको उतना कंटेंट मिलेगा नहीं, यू हैव टू ऐड पनीर एंड अदर थिंग्स, तो उस वो भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज ऑल दोज मिथ्स, इन्वेस्टिंग इन हेयर ऑयल्स, ऑल दोज एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स, दे कीप पीपल कीप डूइंग एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट, सो आई वुड से दैट वुड बी द थर्ड वन।
ओके, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे हेयर ऑयल ग्रोथ, आयुर्वेदिक बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे नुस्खे हैं या बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे कंपनीज भी हैं जो आयुर्वेदा के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं, आयुर्वेदिक साइंस के ऊपर बैंक करते हैं, उससे हेयर ग्रोथ होती है, उससे हेयर डू यू थिंक दैट कि हेयर रिस्टोर हो जाते हैं, रेस्टोरेशन जो आपका वर्ड है?
वही है कि देखिए आयुर्वेदा, वी आर एलोपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर, सो वी इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू कॉमेंट अबाउट आयुर्वेदा रिजल्ट एज सच, बट वही है कि जो प्रोसेस ऑफ हेयर मिनिएचराइजेशन है, अभी तक जो USFDA ने अप्रूव किया है वो यही है कि यही 2 दवाइयाँ उनको रिवर्स कर सकती हैं। इसके अलावा बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, आई थिंक दे विल प्रमोट जनरल वेलनेस, बाकी चीज़ों को वो ठीक करेंगे, उससे शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा होता हो, बट एक बार जब बाल चला गया, पूरी तरह बॉल्ड हो गया, तो इवन आयुर्वेदा कैन नॉट रीग्रो द हेयर इन दैट पर्टिकुलर
जोन। दैट्स लाइक दैट वी वुड लाइक टू स्टैंड ऑन दैट स्टेटमेंट कि एक बार चला गया, खाली हो गया, उसमें पौधे ही नहीं है, सो नथिंग विल वर्क,
नहीं है, तो फिर वो रिकवर नहीं होंगी इवन विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स।
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फ्रेंड्स. आपने मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि जब हमारे क्लाइंट्स हमारे सामने दोस्त जैसे आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, राइट? तो अब तो आपका क्या नेक्स्ट गोल ऐसा है कि सारे क्रिकेटर्स आपके दोस्त हो, अगला वर्ल्ड कप फ्री में देखो, हर जगह जाओ.
मैंने इस बार भी वर्ल्ड कप भी मैंने हमने काफी अच्छे से देखा क्योंकि मेरे
अभी मेन क्लाइंट इंडिया के मेन क्लाइंट बन गए, इंडिया के मेन क्रिकेटर, इंडिया के मेन प्लेयर बन गए इन दिस वर्ल्ड कप स्पेसिफिकली मोहम्मद शमी. तो कैसा एक्सपीरियंस था व्हेन ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड, मेरे को बताओ. मोहम्मद शमी के साथ क्या ट्रीटमेंट किया और कैसे स्टार्ट हुआ?
जुलाई फर्स्ट वीक में आई वाज स्केड्यूल्ड टू गो टू यूएसए. मैं वहां था, लंदन में था. लंदन में एक शादी थी, काफी सारे मेरे पुराने पेशेंट्स उनसे मिल रहा था और वहां से मुझे 4 तारीख को जुलाई 4 को मुझे जाना था, यूएसए जाना था, सॉरी 5 को जाना था. मैं शादी में न्यूकासल में था तो वहां मुझे फोन आया रवि जी का, रवि शास्त्री जी का, कि अभी जो ना समी ने वो लिया हुआ ब्रेक. एंड एक्चुअली 2-3 साल से समी और उनके दोस्तों से बात चल रही थी. आजार भाई ने उसको बताया था, सबने बताया था. रवि सर का जब बाल आ गया था तो सब तो देख ही रहे थे. तो फिर उन्होंने बोला कि तेरे को कल करना है, मतलब 4th-5th को करना है. मैंने कहा सर मैं न्यूकासल में हूँ, न्यूकासल से लंदन यू नो वैसे 2 घंटे की ट्रेन है और मैं किसी के हमारे दोस्त की बेटे की शादी में था, तो वही वो वाला यू नो मैरिज वाला कस्ट्यूम में बोला कि अभी उठ. तो मैं फटाफट वो ट्रेन में उसी में जाके मैं आ गया लंदन. 9:30 बजे की फ्लाइट ली, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock पहुँच गया इंडिया और शाम ही आ गया करीब 9 बजे तक आसपास. और फिर हमने 2 दिन उसकी प्रोसीजर चली. उसका एक्चुअली जो सामने से दिखता ना, सामने खाली दिखता बट पीछे भी काफ़ी खाली था. फोटोग्राफ देखोगे तो करीब काफ़ी खाली था, बीच का भी जाने वाला ही है. तो एंड हमने 4,500 के आसपास ग्राफ्ट 2 दिन में करे, आगे और पीछे सारे मोस्टली यहाँ से निकले, थोड़े से भीड़ से निकले हैं. एंड फिर हम जुलाई की बात ख़त्म हो गई. फिर मैंने उस प्रोसीजर ख़त्म करके फिर मैं अगले दिन यूएस चला गया. उसमें डेफिनेटली मेरे लिए डिफ़िकल्ट था आके फिर बीच में जाना, बट हमने फिर देन ही ज्वाइंट एशिया कप में. थोड़े थोड़े दिख रहे थे, हेयरलाइन दिख रहा था. बट जो वर्ल्ड कप में शुरू में 4 मैचेस नहीं खेले थे, फर्स्ट मैच जो खेला हेयरलाइन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था जब न्यूजीलैंड वाला मैच था, बट उनका ग्रोथ फेज शुरू हो गया था. तो विद एवरी मैच जो 2-3 दिन में इंडिया के मैचेस आते थे, हर मैच में थोड़े थोड़े हो रहे थे. और उन्होंने क्या किया कि जब वो जब फर्स्ट फाइबर लिया उसमें बाल तो दिख रहे थे, वो बाल को लेके ना बॉल को लेके ना बाल में ऐसे रगड़ा और अपने हमारे जो बॉलिंग कोच है पारस महामरे उनको दिखा रहे थे कि देखो मेरे सर पे बाल आ गया और मैंने फाइबर ले ली.
एंड देन 2 more cricketers, राइट? रवि शास्त्री जी, वो कैसे आए? रवि शास्त्री कैसे आपके पास आए?
रवि जी का एक्चुअली क्या था कि उन्होंने उनका करेक्टिव प्रोसीजर है. okay. उन्होंने प्रोसीजर पहले करवाया था एंड समहाउ
इंडिया से
कहीं से कराया था, तो उनके बाल इतने अच्छे नहीं थे, तो हेयरलाइन भी अच्छा नहीं था, साइड के टेम्पल उड़ गए थे. बट समहाउ ऐसा नहीं कि आपने एक बार ट्रांसप्लांट कर लिया तो आपने बॉल्डनेस को कॉन्कर कर लिया. आपका बॉल्डनेस प्रोग्रेस भी कर सकता है. जैसे मैंने बोला, अगर आपने मेडिसिन नहीं लिया तो आपके नए एरिया खाली हो जाएंगे. तो कुल मिला कई बार मेडिसिन काम भी नहीं करते. तो बट एनी वे वो आए, उनको हो गया 1.5 साल हो गया.
जो कैसे मतलब हाउ डिड यू रीच आउट कि वो खुद ही आए?
नहीं उनके उनके बहुत सारे फ्रेंड्स
का हमने फ्रेंड्स ने कराया था. तो फ्रेंड्स टोल्ड हिम दैट
तो उनके बड़े सारे फ्रेंड्स, उनके एक दोस्त है राहुल रायचंद, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है. तो उनका बड़ा इम्पॉसिबल वाला था, राहुल रायचंद जी का बॉम्बे के ही है. तो उनका पूरा आ गया, तो उनके यू नो दे हैंग आउट इन द सेम बॉम्बे जिम खाना. तो वहाँ से उन्होंने देखा था कि भाई इसके राहुल के आ सकते हैं. तो ऐसे करके फिर जब वो इंडिया कोच से जब यू नो व्हेन ही काइंड ऑफ यू नो रिजाइंड फ्रॉम इंडियन कोच, फिर उसके बाद उनके पास टाइम था तो ही गॉट इट देन. एंड पूरा का पूरा करीब करीब 4,000 ऑड ग्राफ्ट किए हमने पीछे से और मोस्टली फ्रॉम हिज बियर्ड. वो 6-7 महीने में काफ़ी धीरे धीरे कवर होने लग गया. तो उससे पहले आजहर भाई का उससे पहले हुआ था, आजहर भाई का, हाँ अजहरुद्दीन का. तो सामने और पीछे आजहरुद्दीन के हमने भाई के हमने कितने लगाए करीब 6,000 के आसपास ग्राफ्ट
लगाया. उनका क्या था कि उनका डोनर तो बहुत अच्छा था क्योंकि पुरानी सर्जरी कोई हुई नहीं थी, बट उनके जो बेटे के रिजल्ट्स कहीं और से, तो ही वाज अनहैप्पी, ही डिड नॉट हैव मच होप. बट फिर हमने उनके बेटे का भी साथ साथ और उनका एक साथ वी डिड द प्रोसीजर. बेटे का करेक्टिव था और अजहरुद्दीन सर का तो पूरा खाली था, तो इट वॉज ईजी. सो इट वॉज हिज फर्स्ट प्रोसीजर एक्चुअली. सो
इट वर्क्ड आउट वेरी वेल.
यस.
ओके. तो हाउ मेनी कितने क्लिनिक्स हैं अभी इंडिया में, कितने हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं आपके?
राज हमारा जो मेन हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर अभी हमारा गुड़गांव में है, दिल्ली एनसीआर. बॉम्बे में एक है, देन अभी हैदराबाद इज ओपनिंग, वी हैव भुवनेश्वर में छोटा सा सेंटर है बट दैट इज प्राइमरी फॉर कंसल्टेशन।
दो हैं और अभी तीसरा है।
हाँ, तीसरा।
सो बट अभी दो में कितने डेली कितने ट्रांसप्लांट्स होते हैं और या मंथली कितने ट्रांसप्लांट?
मैं मंथली का एवरेज बता सकती हूँ, एनीवेयर बिटवीन 70-90 प्रोसीजर्स मिला के
ना 35 मतलब डेली ऑलमोस्ट एक से दो
जी
विद बिटवीन ऑल योर मेडिकल स्टाफ टुगेदर।
यस यू डू
इट तो अराउंड 70-90
नवंबर दिसंबर में ज्यादा होता है, छुट्टियां होती है,
थोड़ा ज्यादा रहता है,
बाहर से लोग आते हैं।
इस 70-90 में 60% आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया,
ओके,
दे आर फ्रॉम द यूएस, सो वो हमारे हिसाब से दे टेक द डेट्स, बट दिसंबर में बिकॉज दे गेट हॉलीडेज तो दिसंबर इज ऑलवेज लिटिल बिट मोर।
वाओ, सो 70-90 आई एम जस्ट पुटिंग 80 एज अ नंबर, लेट्स जस्ट सी दैट। एंड व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ पर सर्जरी?
वो ये एक्चुअली कॉस्ट के बारे में आप शुरू में बता रहे थे, एक्चुअली जो कॉस्ट
क्या कितना लगता है
यूजुअली, अगर ओवरऑल में बता सकता हूँ, इंडिया का पूरा सीनियर बता सकता हूँ, अगर ढंग के कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्वालिफाइड इंटेलिजेंट एंड परसिस्टेंट रिजल्ट, मिनिमम 1.5 लाख से शुरू होना चाहिए, अगर जिसको मिनिमम 2.5 से 3 हज़ार ग्राफ्ट चाहिए तो। उससे कम चाहिए तो फिर कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आपके पास जैसे मैंने बोला क्वालिफाइड इंटेलिजेंट एंड स्किल्ड डॉक्टर तो 1.5 से शुरू होना चाहिए, देन यू नो डॉक्टर की हर किसी की स्किल, उसकी यू नो अदर थिंग्स आर, इट इज़ अन लाइक यू नो काइंड ऑफ सर्विस, कोई आर्टिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डॉक्टर है, हर कोई अपना अलग अलग प्राइसेस है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्डाइज प्राइसेस है नहीं हेयर ट्रांसप्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर कोई जो भी एक टैलेंट है, जैसे मैंने बोला कि हर टैलेंट अपने हिसाब से अपना प्राइस रखता है एंड ही नोज हाउ टू जस्टिफाई दैट।
But Eugenics का what's your, how much do you guys charge?
हमारा जो basic cost बताया इन्होंने 1.5 लाख रुपए में 1500 से 2000 graft।
And what's the most expensive? The starting is 1.5 लाख रुपए।
हाँ।
What's the most expensive? इसको पूरा करना हो।
वो फिर 2-3 बार में होता है, एक बार में होता नहीं है। That can go up to like 7-8 lakhs rupees, maybe little bit more depending on कि अगर beard के graft लग रहे हैं। Again पूरा का पूरा बड़ा area अगर है तो वो भी multiple 2-3 साल में। उससे भी कम में हो सकता है, 10,000 रुपए में कर सकते हो, जो लोग हाथ साफ कर उसे वो फ्री में भी कर सकते हैं, दे कैन गिव यू मनी सो दैट यू कैन बिकम सब्जेक्ट टू देम ऑल्सो।
ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, वैसे जस्ट वो लूप खत्म करने, 80 सर्जरीज पर मंथ, 80 into lakh, or let's say 2 lakh around. So you guys are clogging around 1 crore a month as a revenue.
Clogging the expenses also.
So we have got revenue.
I got 200 odd people now. So people like
200 people.
Plop like now medical, non-medical.
All the centers together.
Wow. That is incredible. Yes. By the way, that is incredible.
Close
because
to
doctors is a profession, and then in a profession you are employing so many people. So you're, I mean, you're not treating so many people, but you're helping. Let's say, how would I say that? You're helping them get their confidence back. So A, your patient-wise to abhik justice kar rahe ho, plus you're employing so many people. That's incredible. 200 log matlab bahut badhiya hoti. One of the biggest myths jo mere inhone team ne likha hai. Actually, teen question hai, one-one answer hi hoga.
One-one line, one-one answer hi hoga, right?
First question hai jo team ne likha hai, that is, masturbation se hair loss hota hai. That's one of the biggest searches that people are doing on Google and YouTube.
No correlation.
ऐसे बहुत सारे articles हैं, myths हैं that you should not do it.
100% no correlation.
नहीं, it has no correlation with hair loss at all.
That is first. Second is there any book that people could read about understanding their hair health and themselves?
So they are like the scientific forums are there, patient forums, third party patient forums by the patients, and one of the popular ones is Hair Transplant Network. Their hair loss and bald truth, so they can go there and you know spend some time, maybe 30 minutes or 1 hour every day for maybe 1 month. They will have so much of knowledge. They will be in a very beautiful position to take a conscious decision. So forums are there, live you know true patient, actual patients हैं जो बात करते हैं. तो मैं सबको बोलता हूँ कि forum में जरूर जाओ. Rather than going to Google alone, forum पे जाओ और उसमें पास्ट पेशेंट्स हैं, करंट पेशेंट्स हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं कि हम डिसीजन लेने वाले हैं, तो दैट विल बी
बिग थिंग. क्या क्या बताया आपने? हेयर ट्रांसप्लांट नेटवर्क, बॉल ट्रूथ
एंड हेयर लॉस एक्सपीरियंस.
ओके, दीज आर थ्री
There are many, but
so there are online forums, and we are also in the process of writing a book for the hair health purpose.
हमने एक्चुअली एक तो बुक लिखा हुआ है डॉक्टर्स को लिखा हुआ है तो अभी पेशेंट्स के लिए हम लोग ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट ताकि पेशेंट पढ़ पाए बट मोर और लेस गो टू द फोरम्स एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस.
ओके लास्ट क्वेश्चन, कभी मिस ट्रीटमेंट होता है गलत हो गया या प्रॉब्लम्स क्या होती है जिसके साथ सही नहीं हुआ हेयर ट्रांसप्लांट?
देखिए क्या है कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा घने बाल नहीं आएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी को समझना. ट्रांसप्लांट के बाद जो डेंसिटी अचीव होती है वो एक रीजनेबल डेंसिटी होती है, वो एक इल्यूजन ऑफ कवरेज क्रिएट करती है. अगर आप उन बालों में पानी डालेंगे, तेल डालेंगे या फ्लैशलाइट के साथ फोटो लेंगे तो थोड़ा खालीपन दिखेगा. सो करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेटिंग अगर नहीं होगी तो पेशेंट कैन बिकम डिससैटिस्फाइड कि मेरे बाल उतने घने नहीं लग रहे. ठीक है, बट हाँ अगर सेंटर का एक्सपीरियंस कम है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कम है, द वर्स्ट थिंग इज बाल अननेचुरल दिखें. ठीक है, और कभी कभी किसी किसी को नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है कोई एरिया में, एरिया टिश्यू डेड हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाल लगा दिए गए बहुत क्लोजली, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. और किसी किसी को डोनर एरिया में पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में आई वुड से ये दो तीन चीज़ें हैं.
और कितने चांसेस होते हैं, लाइक आउट ऑफ 100 कितने पेशेंट्स को ही हो गए, आउट ऑफ 1000 कितने पेशेंट्स को हो सकता है?
देखिए
गलत होना, प्रॉब्लम्स होना, अभी तक एक्सपीरियंस में कितना होता है?
देखिए जो नेक्रोसिस वगैरह है वो बहुत रेयर, 2 साल में एक बार किसी पेशेंट को कुछ छोटा सा एरिया में नेक्रोसिस हो सकती है. और पैचिनेस भी बहुत रेयरली, डोनर में शॉक लॉस हो जाता है बट वो रिकवर हो जाता है.
समटाइम्स इट साउंड्स स्कैरी बिकॉज सर्जरी है, समटाइम्स इट साउंड्स कि क्या ही होगा ज़्यादा, क्योंकि ओवरऑल अच्छा ही होना है बिकॉज one day of discomfort or 7 days of discomfort can lead to lifetime of confidence. So it's a very mixed feeling, but thank you so much for telling us about everything and guiding us ki kaise ho sakta hai, kya ho sakta hai, galat kya ho sakta hai. And I'm so happy that bahut sare log na ye batate nahi hai galat kya ho sakta hai, to bolte hai kuch nahi kara lo, bahut acha hai, sab se ye hai wo hai. I'm so happy ki aap logo ne sab baat kari about कि सर्जरी में क्या गलत हो सकता है, नॉर्मल में तुम क्या चीज़ें ले रहे हो वो गलत हो सकता है, मेडिसिन तुम गलत ले लोगे तो क्या हो सकता है. इट्स वेरी रेयर टू सी दैट पीपल हु आर टेक्निकली रनिंग अ बिजनेस एज वेल स्पीकिंग सो ओपनली. आई थिंक वो डॉक्टर वाला साइड ज़्यादा बाहर आता है, वेरी यू वांट टू सजेस्ट पीपल मोर देन यू वांट टू रन अ बिजनेस, सो दैट्स वेरी गुड क्योंकि लोग बताते नहीं है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी डिड दिस, थैंक यू सो मच. डेफिनेटली आई एम सेंडिंग few people from my house to your clinic and your centers and how their experience will be like, I'll share it with my audience and let's see how it goes. Actually mujhe pata nahi tha until we started the podcast that you have actually treated my friends and my friends family as well. This is a small world and thank you so much for doing this. I'm glad that aap dono aaye, aapne ye kiya. Kuch mujhse galat pucha gaya ho ya maine kuch galat bol diya ho to please sorry uske liye, but I was just trying to help my audience by asking very very random questions, very questions on the basis of ki agar main patient hu to kaise karunga, because ultimately as per your diagnosis or not diagnosis, as per your experience kabhi na kabhi main patient banne wala hu to dekh sakte hain. Thank you so much for answering everything.
Main ek last line bolunga, actually hair transplant karne se pehle at least agar aapne ek saal research nahi kiya, minimum ek saal mere hisab se, maybe more, तो रिसर्च करना चाहिए. गो टू मल्टीपल क्लिनिक्स, मीट मैनी डॉक्टर्स एंड ट्राई टू मीट मैनी पास्ट पेशेंट्स एंड ऑनलाइन जाना चाहिए. एक साल का पूरा इंक्यूबेशन पीरियड लेना चाहिए बिफोर यू जंपिंग एंड यू नो काइंड ऑफ फॉर अ ट्रांसप्लांट. एक साल नहीं किया तो चांस है कि यू माइट डू अ मिस्टेक इन ऑल आवर एक्सपीरियंस आई कैन टेल.
बट लेट, लास्ट क्वेश्चन, लेट हो सकता है क्या कि अगर मैं सोचूं डिले कर दूंगा, कल कर लूंगा, एक हफ्ते बात कर लूंगा, एक साल बात कर लूंगा, मुझे पढ़ने दो, दो साल बात करूंगा?
नहीं, लेट जितना लेट होगा उतना आपके रिजल्ट्स और स्टेबल होंगे, लॉन्ग होंगे और आपको जो मेडिकेशन की नीड है और कम होगी. तो देर इज लेट का कोई ज्यादा इशू नहीं,
मतलब एंड योर डिसीजन विल बी मैच्योर.
27 को मैं कराऊं, 28 में कराऊं, 29 में कराऊं, 35 में कराऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई फर्क नहीं पड़ता.
आ कभी भी सकते हैं हर जगह.
जी जी,
आई कैन गेट बैक टू एज गुड एज व्हेन आई वाज 20.
हां, सो वी हैव डन सर्जरी फॉर 70 प्लस आल्सो. समबडी वाज 75 इयर्स ऑफ एज व्हेन ही डिड हिज प्रोसीजर एंड इट वाज वेरी सुपर सक्सेसफुल.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. इस एपिसोड के थ्रू और इस पूरे पॉडकास्ट के थ्रू हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि आप और हम कैसे एक बेहतर इंसान बन सकें सो दैट वी कैन लिव एंड लव बेटर। एंड उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हेल्थ के बारे में, लॉ के बारे में, बिजनेस के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हर किसी के बारे में एक बेटर नॉलेज दे पाएं। तो आप हमें बताओ कि कैसे और गेस्ट हैं या कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में, कॉमेंट्स में हमें बताओ ताकि हम वैसे टाइप के गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएं। और आपकी कोई भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई एक्सपर्ट हम ला सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। प्लीज़ लेट अस नो। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से बिफोर यू लीव दिस एपिसोड। आपको पता है कि एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इससे हेल्प होगी। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।